स्वागत है। आज हम एक बहुत ही विशेष स्रोत पर बात कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का उद्बोधन है, हिमालय का अज्ञातवास एवं हमारी तपस्या।
हाँ, ये उनके अपने जीवन के अनुभवों पर आधारित है, खासकर हिमालय में उनका समय और उनकी जो गहन साधना पद्धतियाँ थी उस पर।
बिल्कुल, इसमें हम समझेंगे कि कैसे एक दिव्य शक्ति के मार्गदर्शन में उनका जीवन चला, वो भी सिर्फ 15 वर्ष की आयु से।
और उनकी वो 24 वर्षों की जो कठोर तपस्या थी उसका क्या स्वरूप था।
हाँ, और हिमालय में उनका जो अज्ञातवास रहा उसका क्या रहस्य था, क्या उद्देश्य था, चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं।
बिल्कुल, ये उद्बोधन मतलब सिर्फ घटनाओं का एक लेखा जोखा नहीं है, ये हमें तप, साधना और एक बड़े आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रति जो समर्पण होता है
उसके गहरे अर्थ समझाता है।
हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कैसे व्यक्तिगत साधना को लोक मंगल के मतलब समाज के कल्याण के एक बड़े उद्देश्य से जोड़ा गया।
तो शुरुआत होती है 15 साल की उम्र से। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखा, आत्मबोध हुआ।
एक तरह से कहें तो अपने जीवन का जो मिशन था वो स्पष्ट हो गया।
हाँ, और वहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई। फिर मार्गदर्शन मिला 24 वर्षों तक आत्म संशोधन की साधना का।
और ये साधना कोई साधारण नहीं थी, मतलब जौ की रोटी पर रहना, जिह्वा और इंद्रियों पर पूरा संयम।
और हर नारी में माँ, बहन, बेटी का भाव देखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल, साथ ही गायत्री मंत्र, उसका सिर्फ जाप नहीं बल्कि उसके मर्म को समझना। धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को सही रास्ते पर ले चलें।
हाँ, उसे जीवन में उतारना। और वो अखंड दीपक,
वो अखंड दीपक प्रतीक था निरंतर ज्ञान और जागृति का। ये सब आत्मबल पाने की तैयारी थी। साधना की सफलता चमत्कारों में नहीं बल्कि उनकी निष्ठा और स्थिरता में देखी गई।
अच्छा, तो 24 साल बाद जब उनके गुरुदेव फिर से प्रकट हुए।
हाँ, उन्होंने तप की सफलता की पुष्टि की, चमत्कार नहीं निष्ठा देखी।
निष्ठा के आधार पर फिर उन्हें निर्देश मिला सहस्रकुंडीय यज्ञ का। क्यों? अपनी आत्मशक्ति का प्रभाव देखने के लिए।
हाँ, एक तरह से परीक्षा थी कि जो आध्यात्मिक शक्ति अर्जित की है क्या उसका भौतिक जगत में प्रभाव दिखता है,
अपना विश्वास पक्का करने के लिए भी।
और वो यज्ञ तो अभूतपूर्व रूप से सफल रहा, बिना किसी संग्रह के लाखों लोग जुटे, सारी व्यवस्था हो गई।
बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव ने इसे तप और पुण्य का परिणाम माना। ये एक मोड़ था जिसने उनका विश्वास पक्का किया कि हाँ, आध्यात्मिक शक्ति से सांसारिक प्रभाव भी पैदा हो सकता है।
इसी के बाद उन्हें अगले 10 साल का काम मिला।
हाँ, गायत्री परिवार का संगठन बनाना और यज्ञ के प्रचार प्रसार का कार्य, ये जमीनी काम था।
10 साल ये काम करने के बाद फिर हिमालय प्रवास।
हाँ, फिर आया एक वर्ष का हिमालय प्रवास, गंगोत्री उत्तरकाशी में रहना। लेकिन असली बात थी अपने गुरुदेव के साथ 4 दिन बिताना
और उससे जो शक्ति मिली उसे साल भर हजम करना, जैसा वो कहते हैं। बिल्कुल, जैसे बैटरी चार्ज होती है वैसे ये आध्यात्मिक रिचार्ज था, ताकि आगे के काम के लिए ऊर्जा मिले। हिमालय का वो क्षेत्र वो एक आध्यात्मिक ध्रुव जैसा है।
और दूसरा हिमालय प्रवास भी हुआ है ना, हालांकि उसका विवरण उन्होंने गुप्त रखा।
हाँ, उद्देश्य शायद वही रहा होगा, ऊर्जा का नवीनीकरण।
फिर शुरू हुआ अगले 10 वर्षों का कार्य, युग निर्माण योजना। ये क्या थी?
ये बहुत व्यापक थी, सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक क्रांति लाने का लक्ष्य था। व्यक्ति, परिवार, समाज का निर्माण।
इसमें वैज्ञानिक अध्यात्म का समन्वय भी था, है ना?
हाँ, वैज्ञानिक सोच और अध्यात्म को साथ लाना। और अब जो वर्तमान 5 वर्षीय योजना है उसमें एक मुख्य काम है प्राण प्रत्यावर्तन।
प्राण प्रत्यावर्तन, ये क्या है?
इसका मतलब है अपनी 24 वर्षों की तपस्या से जो शक्ति अर्जित की उसका एक अंश लगभग 1,00,000 पात्र व्यक्तियों को देना।
देना क्यों?
ताकि वे लोक मंगल के कार्य को, समाज बदलने के काम को आगे बढ़ा सकें। ये पात्रता और क्षमता के अनुसार होगा।
इसके लिए बार बार हिमालय जाकर ऊर्जा लानी पड़ेगी। वो नेवले और जड़ी बूटी का उदाहरण दिया था उन्होंने।
हाँ बिल्कुल, जैसे नेवला सांप से लड़ने के लिए बार बार बूटी खाकर शक्ति लेता है, वैसे ही उन्हें भी इस ऊर्जा को बांटने के लिए स्रोत से बार बार जुड़ना होगा।
और अब कार्यक्षेत्र सिर्फ भारत या हिंदू समाज तक सीमित नहीं है।
नहीं, अब लक्ष्य है संपूर्ण विश्व और सभी धर्म संप्रदाय। योजना है कि समाज के जो प्रभावशाली वर्ग हैं, साहित्यकार, कलाकार, धर्माचार्य, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, धनपति, उन तक पहुंचा जाए।
अच्छा, उन तक पहुंचकर क्या करना है? उन्हें भी साधना करवानी है?
नहीं नहीं, उद्देश्य है उनकी जो शक्ति है, उनका जो प्रभाव है, उसे युग निर्माण की दिशा में मोड़ना। सकारात्मक बदलाव के लिए,
जैसे अंगद ने रावण की सभा में पैर जमाया था।
हाँ, कुछ वैसा ही। गुरुदेव के संदेशवाहक बनकर दुनिया में जाना और उन प्रभावशाली लोगों को भगवान की इच्छा मतलब युगानुकूल परिवर्तन की जरूरत के बारे में बताना,
और संपत्ति को लोकमंगल में लगाने का आवाहन करना।
सही, अपनी शक्ति अपनी संपत्ति सिर्फ अपने लिए नहीं समाज के लिए भी लगाएं।
तो अगर हम देखें, पूज्य गुरुदेव के जीवन का एक अद्भुत खाका दिखता है। दिव्य मार्गदर्शन से शुरुआत,
फिर कठोर तपस्या,
आत्मनिर्माण,
फिर हिमालय से ऊर्जा प्राप्त करना,
और फिर उस ऊर्जा को एक बहुत ही सुनियोजित चरणबद्ध योजना के तहत विश्व कल्याण में लगाना।
15 साल की उम्र से शुरू हुआ ये सफर दशकों तक चला।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे गहन व्यक्तिगत साधना को एक वैश्विक मिशन में बदला जा सकता है। आत्मविकास और समाज निर्माण, ये एक दूसरे के पूरक हैं।
और उनकी जो भविष्य की योजना है, जैसे 5 साल बाद कार्यभार महिला जागरण को सौंपना, वो भी इसी निरंतरता का हिस्सा है।
आज की इस चर्चा से एक विचार मन में जरूर उठता है, क्या आज के युग में भी ऐसी दिव्य प्रेरित योजनाएं और उन्हें क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं?
और अगर हाँ, तो उन्हें पहचानने और समझने की हमारी दृष्टि, हमारा नजरिया क्या होना चाहिए?
ये सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज के लिए इतना ही।